ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय संख्या 18। अध्याय का नाम है राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति। श्लोक संख्या 30 से लेकर 32 तक। श्लोक संख्या 30 और 31 का मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर हम 32वां श्लोक उच्चारण करेंगे। जब शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह ययाति से कर दिया तो उसने शर्मिष्ठा को भी उसके साथ जाने दिया, लेकिन राजा को चेतावनी दी, हे राजन, इस शर्मिष्ठा को कभी अपने सेज में अपने साथ शयन करने की अनुमति मत देना। हे राजा परीक्षित, देवयानी के सुंदर पुत्र को देखकर एक बार शर्मिष्ठा संभोग के लिए उचित अवसर पर राजा ययाति के पास पहुंची। उसने एकांत में अपनी सखी देवयानी के पति राजा ययाति से प्रार्थना की कि उसे भी पुत्रवती बनाए। राजपुत्रार्थ अपत्ये धर्म चावेक्ष धर्मवेत् स्मर शुक्रवचः काले द्विष्टमेवाभ्यपद्यत। राजपुत्रार्थिते अपत्ये धर्मं चावेक्ष धर्मवेत् स्मर शुक्रवचः काले दिष्टम अभ्य दिष्टम एव अभयापदत्। राजपुत्रार्थितो अपत्ये धर्मं चावेक्ष धर्मवेत् स्मरण शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की राजपुत्रया शर्मिष्ठा से जो एक राजा की पुत्री थी, अर्थितः अनुरोध किए जाने पर अपत्ये पुत्र लाभ के लिए धर्मम धर्म को च भी अवेक्षा विचार करके धर्मवेत धर्म का ज्ञाता स्मरण स्मरण करते हुए शुक्रवचः शुक्राचार्य की चेतावनी काले समय पर दिष्टम संयोगवश एवा निसहंदे अभ्यपद्यत शर्मिष्ठा की इच्छा पूरी करने के लिए स्वीकार कर लिया। अनुवाद। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र के लिए याचना की तो अपने धर्म से अवगत राजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गया। यद्यपि उसे शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी, किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उसने शर्मिष्ठा के साथ संभोग किया। तात्पर्य, राजा ययाति को क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा ज्ञान था। यदि कोई स्त्री क्षत्रिय के पास पहुंचे तो वह उसे ना नहीं कर सकता, यही धर्म का नियम है। इसलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्वारका से लौटने पर अर्जुन अप्रसन्न है तो उन्होंने पूछा कि कहीं उसने पुत्र की कामना से आई हुई किसी स्त्री को तो ना नहीं की। यद्यपि महाराज ययाति को शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी, किंतु वे शर्मिष्ठा से ना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि उससे पुत्रदान देना बुद्धिमानी होगी, अतः उन्होंने उसके मासिक धर्म के बाद उसे संभोग किया। इस प्रकार की भोग इच्छा धर्म के विरुद्ध नहीं है, जैसे कि भगवद गीता 7:11 में कहा गया है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि। ऐसा विषय जीवन जो धर्म के विरुद्ध ना हो उसकी छूट कृष्ण देते हैं। चूंकि राजपुत्री शर्मिष्ठा ने ययाति से पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए उसका संयोग विशेष सुख के लिए नहीं था, अपितु वह धर्म कार्य था। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग चल रहा है, फैमिली ड्रामा, और जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ते जाएंगे एक के बाद एक ये स्टोरी और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। और हम यहाँ देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में तरह तरह के प्रसंग हैं, तरह तरह के उसमें व्यक्तित्व हैं, तरह तरह की परिस्थितियाँ हैं, और ये परिस्थिति चल रही है। इसमें अभी तक मुख्यतः जो चरित्र हैं राजा ययाति हैं, शर्मिष्ठा जो कि एक राजा विप्रश्रवा की पुत्री, और देवयानी ययाति की पुत्री, ययाति की पत्नी जो, और शुक्राचार्य की पुत्री भृगुवंशी शुक्राचार्य, और शर्मिष्ठा, देवयानी, शुक्राचार्य और ययाति, ये सारे जो चरित्र हैं इनका जब हम व्यवहार देखेंगे तो हमें लगेगा कि अगर हम भी इस परिस्थिति में होते तो ऐसा ही व्यवहार करते। शुरुआत होती है शर्मिष्ठा और देवयानी दो सहेलियां हैं, सखियां हैं, स्नान करने गई, छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, गाली गलोच हो गया, इतना गुस्सा आया झगड़े में कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को नग्न अवस्था में कुएं में डाल दिया। फिर राजा ययाति आ रहे हैं वहाँ पे शिकार करते हुए, तो उन्होंने देखा कि पानी पीना था, कुएं में देखा एक युवती नग्न अवस्था में, असहाय अवस्था में है, तो उन्होंने हाथ बढ़ा के उसकी सहायता की, उसको बाहर निकाला, तो इतनी सुंदर युवती ऐसी अवस्था में तो उनका स्वतः ही आकर्षण होगा। और फिर देवयानी ने कहा आपने मेरा हाथ तो पकड़ ही लिया, अब मेरे पति भी बनी है। हालांकि ये प्रतिलोम विवाह था, वो ब्राह्मण की पुत्री है, एक क्षत्रिय है, लेकिन ये आते भी अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने विवाह के लिए स्वीकार कर लिया। और फिर जाके देवयानी यहीं संतुष्ट नहीं हुई, अभी भी क्रोध था उसको शर्मिष्ठा के प्रति, उसने मुझे कुएं में क्यों धकेला, जाके अपने पिताजी को शिकायत लगाई, शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आ गया, मेरे शिष्य राजा विप्रश्रव की पुत्री की ये दुस्साहस, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। वो गुस्से में निकले राजा के दरबार की ओर। विप्रश्रव को मालूम चल गया कि ब्राह्मण आ रहे हैं क्रोध में, श्राप ना दे दें, किसी ढंग से अपना बचाव करूं, तो बोलो जो कहेंगे करने को तैयार हूं। पहले रास्ते में ही पांव पड़ गए, तो शुक्राचार्य ने बोला ठीक है, मेरी पुत्री का जहां विवाह होगा, हालांकि तुम्हारी पुत्री राजकुमारी है, वो इसकी दासी बन के जाना पड़ेगा, सब स्वीकार है, आप श्राप मत दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में यही तो व्यक्ति करेगा। अब शर्मिष्ठा को दासी बना के भेज दिया गया, तो वो कहां शांत होगी, राजकुमारी थी और दासी बन गई, तो उसका भी क्रोध तो शांत हुआ नहीं। और फिर देखा कि देवयानी जो उसकी प्रतिद्वंदी है, उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हो गया, उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई, मैं यहां दासी की तरह पड़ी हूं। और उसने बोला कि ययाति ने मुझे दासी के, हाँ मैं ययाति के हाँ दासी के समान हूं, तो राजा तो दासी से पुत्र उत्पन्न कर सकता है, अच्छा मौका है। तो मैं शर्मिष्ठा गई ययाति के पास कि मुझे पुत्र चाहिए। इससे पहले शुक्राचार्य जी जब विवाह के ययाति से, तो एक कंडीशन रख दी कि ये परिस्थिति है, हालांकि शर्मिष्ठा दासी के रूप में आ रही है, और वैदिक संस्कृति में राजा दासी से भी पुत्र उत्पन्न करते थे, लेकिन इस दासी से पुत्र उत्पन्न मत करना, बस ये पर्टिकुलर दासी है, बस बाकी किसी भी दासी से आप पुत्र उत्पन्न करो, किसी और स्त्री का संग करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये जो है शर्मिष्ठा इसका कभी नहीं करना। तो ये हो गया। तो देखें एक के बाद एक पेचीदा स्टोरी होती जा रही है, और इसकी वजह शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के पास जाती है, सॉरी ययाति के पास जाती है। तो ययाति अब धर्म संकट में है, राजपुत्र अर्थितो अपत्य, राजपुत्री है, हालांकि वो दासी है लेकिन है तो राजपुत्री, और वो गई ययाति के पास अर्थितो अपत्य, मुझे भी संतान चाहिए, चाविक्ष्य धर्मविद। तो राजा तो सब धर्म जानते हैं कि किसी क्षत्रिय के पास कोई स्त्री आए संतान की प्राप्ति के लिए, तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकता, ये आज के कलयुग में लागू नहीं होता। उस समय वैदिक संस्कृति की बात है, और यहाँ प्रभुपाद बता भी रहे हैं कि जब अर्जुन द्वारका से वापस आए थे कृष्ण के अप्रकट होने के बाद, तो बहुत उदास थे, तो कई उदासियों का कारण पूछते पूछते एक कारण ये भी पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई स्त्री आपके पास आई हो और उसको आप उसको संतुष्ट ना कर पाए हो। इसी ढंग से देखते हैं महाभारत में भी, जब पांडव वन में थे तो वहां पे दो एक राक्षस भाई और राक्षस बहन थी, हिडम्बा और हिडम्बी, है ना, तो हिडम्बा को सुगंध आ गई मानव की, तो अपनी बहन को उसने भेजा, जाओ देखो कौन से मानव है। तो हिडंबी गई देखने, तो भीम से बहुत आकर्षित हो गई और सुंदर रूप धारण करके भीम के पास आई विवाह का प्रस्ताव लेके। भीम ने कहा मैं बहुत अभी क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं, मैं कोई विवाह वगैरह नहीं कर सकता, मैंने तो बस कौरवों को हराना है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो हिडंबी को मालूम था ये कैसे मना कर सकता है, क्षत्रिय होते हुए मना कर नहीं सकते। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास गई, देखिए आपका भाई धर्म का पालन नहीं कर रहा। तो युधिष्ठिर ने बोला नहीं विवाह करो, विवाह करना पड़ेगा, है ना। तो ये धर्म था। तो अब ययाति ने सोचा ये धर्म है, पालन करना है। लेकिन स्मर शुक्र वचः, उनको याद भी आ रहा है कि शुक्राचार्य ने इसी स्त्री के लिए वार्निंग दिया था, चेतावनी दी थी कि इससे संतान उत्पन्न मत करना। अब यही मेरे पास आ गई, तो उसने बोला जो होगा देखी जाएगी, भगवान की इच्छा है, मेरे को अपने धर्म का पालन करना है। इसके बाद शर्मिष्ठा से जब संतान उत्पन्न हो जाएगी और ये बात जब देवयानी को मालूम चलेगी, तो देवयानी का क्या होगा, बहुत क्रोध आया उसको। वापस गई अपने मायके में पिताजी के पास कि देखिए देखिए ऐसा कर दिया आपके दामाद जी ने, शर्मिष्ठा से भी संतान उत्पन्न कर दी। तो शुक्राचार्य को और क्रोध आया और बहुत गाली देते हैं उसको, हे कामुक व्यक्ति, स्त्रियों का संग करता है, तेरे को मना भी किया था शर्मिष्ठा का संग नहीं करना, जाओ बूढ़े बन जाओ, सारा यौवन छीन लिया जाएगा आपसे। तो उसके बाद याति जी की इतनी बुरी हालत हो जाती है, बोले अगर मैं बूढ़ा बन गया तो आपकी पुत्री भी संतुष्ट नहीं रहेगी। तो फिर शुक्राचार्य बोलते हैं ठीक है कहीं से भी यौवन आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो फिर इतने निर्लज हो जाते हैं कि अपने पुत्रों के पास जाके भीख मांगते हैं कि मेरा बुढ़ापा ले लो, मेरा यौवन मुझे वापस दे दो। तो ये सारे जब हम देखते हैं तो प्रश्न उठता है भागवतम में क्यों ये चर्चा की जा रही है। ये तो साधारण हम जैसे लोगों का व्यवहार है कि हम भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं तक भी गिर जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और सोचते नहीं लड़ाई झगड़े में क्या हो रहा है, ऐसा वर्णन क्यों है। और भागवतम को तो अमल पुराण बताया गया है और भागवतम के प्रारंभ में ही घोषणा कर दी गई कि इस अमल पुराण में क्या मिलने वाला आपको, वैद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रय अनमूलनम धर्म पूजिता कैटवत परम निमत सराणाम सताम, कि इस भागवतम में सारे ये जो उल्टे सीधे धोखा देने वाले धर्म है इस सब की छुट्टी कर दी गई है, केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन है, यही वास्तविक वस्तु है, वैद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम, यह सबके लिए लाभकारी है। तो ये कैसे, ये प्रसंग हमारे लिए कैसे लाभकारी होगा, तो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे किस प्रकार ये याति महाराज का अंत होता है कि वो ये सारे कामुकमय जीवन से इतने दुखी हो जाते हैं कि उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और वे घर छोड़कर वन की ओर बढ़ते हैं। तभी इस नवे स्कंद का नाम भी है मुक्ति, भागवतम के 10 विषयों में से एक विषय मुक्ति। तो ययाति महाराज एक आर्यव्रत थे और भागवतम के पहले स्कंद में जब परीक्षित महाराज प्रकट हुए तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे कहा कि इस पुत्र का क्या भविष्य होगा, क्या इसका चरित्र होगा। तो सब ने बहुत सुंदर सुंदर भविष्यवाणी की कि आपका जो पोता है ये शिबी की तरह, राजा शिबी की तरह दानवान होगा, रंती देव की तरह बहुत दयालु होगा और ययाति की तरह धार्मिक होगा। याति है वह धार्मिक, है ना, याति जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है शास्त्र में कि ये याति की तरह धार्मिक बनेगा, क्योंकि याति जी ने बहुत यज्ञ किए थे, बहुत दान दिए थे, लेकिन काम वासनाओं में पड़ के उनका ज्ञान ठग गया। आवृतम ज्ञान ये ना ज्ञान इन नित्य वैरिणा, उनका ज्ञान ठग गया और प्रतिलोम विवाह किया, और प्रतिलोम विवाह यानी कि अपने से उच्च जाति की स्त्री से विवाह किया और शुक्राचार्य जी ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जो आप कह रहे हैं वैसा करेंगे, मुझे विवाह करने दीजिए, और फिर उसको इसका उनको परिणाम भुगतना पड़ा। तो हालांकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया लेकिन समस्या और गंभीर हो गई। तो यहां हम देखते हैं इस आज के श्लोक से हम दो सिद्धांत निकालने का प्रयास करेंगे कि हालांकि ययाति जी ने धर्म का पालन किया, श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो ययाति जी ने अपने क्षत्रिय धर्म का तो पालन किया लेकिन ये केवल अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना ही पूर्ण नहीं है ना? दो प्रकार के धर्म है, एक पराधर्म एक अपराधर्म। जो अपराधर्म है वो हमारे शरीर के स्तर पे है, हमारा क्या वर्ण है क्या आश्रम है उसके अनुसार, और जो पराधर्म है वो आत्मा का धर्म है ना? तो केवल अपरा धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने वर्ण के अनुसार क्षत्रिय धर्म का ब्राह्मण धर्म का पालन किया, लेकिन परा धर्म भगवान को संतुष्ट नहीं किया तो पूर्ण नहीं है। सवे पुंसो परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। असली संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि तो तभी मिलेगी जब हम भागवत धर्म का पालन करेंगे। याति महाराज ने क्षत्रिय धर्म का तो पालन किया लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं थी और समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। इसलिए वर्णाश्रम बिना वैष्णवता के किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता, इसमें कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, जो समाज है एक सुचारू रूप से चलता है लेकिन समस्या बनी रहती है, क्योंकि जब तक वैष्णवता कृष्ण केंद्र में नहीं होंगे कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो ये पहली शिक्षा, इसलिए नारद मुनि बताते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम मुझे हरे भजन अपकवत पते ततो यदि तत्र का अभद्रम भूत किम कावर तापतो अभजतम स्वधर्मताम। अपने धर्म का तो पालन किया लेकिन भजन नहीं किया तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला, है ना। तो यहाँ यदि महाराज कोई कामवश एकदम शुक्राचार्य से सारी उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया, फिर इसके बाद धर्म का भी पालन किया तो कुछ परिस्थितियों में सुधार हुआ नहीं और बिगड़ी परिस्थितियां। अब उनके पास विकल्प भी नहीं था, शर्मिष्ठा को मना करते तब भी धर्म का पालन नहीं हो रहा, किया तो शुक्राचार्य जी के वचन के विरोध में गए। तो ये हम देखते हैं कि वर्णाश्रम तब पूर्ण होगा जब देवी वर्णाश्रम हो, संसिद्धिम हरितोष्णम हो, तब जाके इसका पूरा प्रभाव होता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो ये चरित्र हैं इन सबके सब अपने प्रकृति के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। गुस्सा आया, श्राप दिया, लड़ाई झगड़ा किया, अपशब्द बोले, तो हमारी मानसिक स्थिति या कोई भी स्थिति की तीन परिस्थितियां होती हैं, है ना। एक तो है प्रकृति, प्रकृति यानी कि एक साधारण अवस्था, कोई किसी का स्वभाव है, प्रकृति है, साधारण अवस्था है। और जब वो साधारण अवस्था से वस्तु बिगड़ जाती है तो प्रकृति से क्या बन जाती है? विकृति, है ना। और साधारण अवस्था से उसमें कुछ सुधार हो जाता है तो प्रकृति क्या बन जाती है? संस्कृति, है ना। जैसे कि कोई कमरा है या एक मंदिर है, अगर इसमें हम सफाई ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, कोई वस्तु व्यक्ति भी ना आए, कोई ना आए, बंद हो जाए, समझ लो आप कमरा बंद करके जाते हैं कहीं बाहर, वापस आते हैं तो कमरा साफ मिलता है कि गंदा मिलता है? आप स्वाभाविक है, गंदा तो अपने आप हो ही जाएगा। तो स्थिति तो अपने आप बिगड़ जाती है, बिगाड़ने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, है ना। तो क्या हुआ? प्रकृति से विकृति। लेकिन उसको अगर सुधारना है, हमेशा साफ रखना है, तो क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। तो प्रकृति से क्या हो जाएगा? संस्कृति, है ना। तो ये जो नियम है हमारे जीवन की हर परिस्थिति में लागू होता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी व्यक्ति कुछ आदतें, हमारी साधना, हमारा जप, हमारा अध्ययन, हमारा भक्तों से आदान प्रदान, पूरे समाज में, भक्तों के समाज में, हमारे व्यवसाय में, हर जगह ये अप्लाई होगा। एक साधारण स्थिति है, एक साधारण स्थिति से नीचे की स्थिति है, एक साधारण स्थिति से ऊपर की स्थिति है, है ना। प्रकृति है, विकृति है, संस्कृति है। तो किस प्रकार की स्थिति में हमें रहना चाहिए? प्रकृति में, विकृति में, या संस्कृति में? संस्कृति में। लेकिन संस्कृति अपने आप नहीं आएगी, क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। विकृति के लिए अपने आप हो जाते हैं, है ना। और उदाहरण लीजिए, पुरुष और स्त्री के प्रति आकर्षण प्राकृतिक है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होगा, ठीक है ना। इस आकर्षण को, इस मैथुन की इच्छा को पूरा करें अगर नियमों के अनुसार तो क्या बन जाएगी? संस्कृति। लेकिन नियमों के अनुसार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी? विकृति, है ना। ऐसे आज के समाज में है, है ना। इतने कामुकता को बढ़ाया जा रहा है कि कोई रोक टोक नहीं है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि अवैध तरीके से, अननेचुरल तरीके से आप अपनी कामों की इच्छाएं पूरी करें, और उसको एडवांसमेंट, उसको प्रगति का लक्षण बताया जाता है, है ना। यहां पर बताए जा रहे हैं प्रभुपाद कि संतान की इच्छा से और संतान की प्राप्ति के लिए उन्हें संभोग किया, ये धर्म वृद्धो कामोस्मी, भगवान गीता में कह रहे हैं। ये धर्म, ये अधार्मिक नहीं है, ये धार्मिक है। लेकिन आज के संसार में अगर ये बात आप कहीं ओपन समाज में बोलें तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे, बोले क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, कितनी दिक्कतें हो जाएंगी, क्या क्या नहीं हो जाएगा। नहीं, सरकार भी प्रेरणा देती है, सबको उत्साह बढ़ाती है कि गर्भ निरोधक तरीके इस्तेमाल करो, कुछ पढ़े लिखे हो सोचो समझो क्या है गर्भ निरोधक इस्तेमाल करो, पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है इस बात को, है ना। एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में लॉस एंजलिस में 1973 में स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे थे कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखा जा सकता है, और प्रभुपाद कह रहे थे कि जब तक हमारा जीवन अनियमित है और हम असाधारण तरीके से अप्राकृतिक तरीकों से जीवन बिता रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि कैंसर का एक मुख्य एक कारण यह भी है कि आप गर्भ निरोधक तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है शिष्यगण बड़े चकित हो गए हो, ये बात क्या कर रहे हैं, कहां कैंसर कहां गर्भ निरोधक तरीके। तो प्रभुपाद कहकर आप चाहे तो इसमें आप कुछ डिस्कवरी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, लेकिन प्रभु वाले ऐसा है जितना हम अप्राकृतिक तरीके से जीवन जिएंगे बीमारियां फैलेंगे, है ना। और प्रभुपाद कहते हैं कि जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ना, कि जो लोगों की क्वालिटी खराब है, चरित्र खराब है, तो इसीलिए घर में एक बच्चा भी बहुत है, संभलता ही नहीं है ना, क्योंकि संस्कार नहीं दे रहे, संस्कार देने की विधि मालूम नहीं है, संस्कार कैसे देना है, तो संस्कृति कैसे आएगी। संस्कृति संस्कारों से आती है, और संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण की क्रियाएं, और पूरी ये वैदिक सभ्यता हमारे शुद्धिकरण के लिए है, और शुद्धिकरण जन्म से पहले शुरू होता है और मृत्यु के बाद तक चलता रहता है, इतना ये वैदिक सभ्यता में इतनी गहराई है। जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, फिर श्राद्ध भी चलते रहते हैं, है ना, मृत्यु के बाद भी संस्कार समाप्त नहीं होते, तो पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता इस पर केंद्रित है। लेकिन आज के समाज में कोई नहीं, कोई संस्कार नहीं है, तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हर जगह लूटपाट, इतना क्रोध, इतना आक्रोश, इतनी लड़ाई झगड़े, कोई भी संतुष्ट नहीं है। जहां विकृति है वहां कोई संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, और जहां संस्कृति है वहां प्रेम है, वहां सद्भाव है, वहां कोऑपरेशन है, वहां एक दूसरे में विश्वास है। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद भागवतम के पहले स्कंद के प्रीफेस में कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है, इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाएं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु समाज के विराट वपु में कहीं ना कहीं कुछ चुभन है। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखने सम पिन प्रिक, कहीं कहीं पिन चुभ रहा है, हालांकि टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पिन चुभ रहा है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, है ना, पार्किंग स्पेस को लेकर मर्डर हो जाते हैं, है ना, गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच लग गया, कितना लड़ाई झगड़े हो गए। फिर आगे लिख रहे हैं, अतः ऐसे दिशा बोध की आवश्यकता है, एक डायरेक्शन चाहिए जिससे सामान्य हित के लिए मानवता शांति मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके, एक डायरेक्शन चाहिए जिससे पूरे मानव समाज में शांति आ सके, समृद्धि हो सके और सब एक हो सके। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, कैसे, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिककरण के लिए एक सांस्कृतिक भेंट है, अ कल्चरल प्रेजेंटेशन फॉर द रीस्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, एक आध्यात्मिक भेंट है पूरे मानव समाज के पुनः आध्यात्मिककरण के लिए, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारा जो प्रचार है वो होगा एजुकेशन से, डिवोशन से और कल्चर से, तो भागवतम एक कल्चरल प्रेजेंटेशन है, एक सांस्कृतिक भेंट है, यानी कि हम सबने भी अपने जीवन में देखा होगा, हम भक्ति में आने से पहले हमारी कौन सी स्थिति थी, संस्कृति प्रकृति और विकृति में से कौन सी स्थिति थी, अधिकांशतः लोग विकृत अवस्था में या प्राकृतिक अवस्था में थे, बहुत कम होंगे जो संस्कृति की अवस्था से, जिनका जन्म वैष्णव परिवार में हुआ, बचपन से अच्छी बातें सीखी, वो होंगे, अधिकांशतः हमारी बुरी आदतें थी, और जब भक्तों के संपर्क में आए तो हम संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पहनावे में बदलाव आया, किस तरह का हम संगीत सुनते थे और अब कौन सा संगीत सुनते हैं, किस प्रकार का हम भोजन करते थे अब कौन सा भोजन करते हैं, किस प्रकार की हम भाषा उपयोग करते थे अब कौन सी भाषा उपयोग करते हैं, ना किस प्रकार से हमारा लोगों को देखने का तरीका था, किस प्रकार की बात पुस्तकें हम पढ़ते थे, किस प्रकार की बातें हम सुनना पसंद करते थे, तो सबका सब बदला है, है ना, परिवर्तन आया है। और ये क्योंकि हम भागवतम के संपर्क में हैं, पुस्तक भागवत भी और व्यक्ति भागवत के संपर्क में, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया। तो प्रभुपाद बोले यही जो भागवतम है ये सांस्कृतिक भेंट है पूरे समाज का पुनः आध्यात्मिककरण करने के लिए, और यही समाज में शांति समृद्धि ला सकता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी। जितना हम भागवतम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे पढ़ेंगे और इनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे, हम विकृति और प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ेंगे। और जितना हम भागवतम प्रिंसिपल्स को सही ढंग से अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, बड़ा स्वाभाविक होगा प्रकृति से संस्कृति से विकृति की ओर जाना, क्योंकि माया का प्रवाह है। अगर आप गंगा जी में जाके कोई वस्तु डालो अपने आप आगे बढ़ेगी, आपको एफर्ट्स नहीं करने है ना, इसलिए माया का प्रवाह है। तीन गुणों के प्रभाव में अपने आप वस्तु नीचे आती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, हर चीज नीचे ही आ रही है ना। पानी हमेशा नीचे ही गिरेगा, उसके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, बाल्टी खुद उठा के जाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसलिए जो माया का प्रवाह है इस कलयुग में बिल्कुल उल्टा है, हमें सबको विकृति की ओर ले जा रहा है, लेकिन भागवतम हमें क्या कर रहा है, नहीं इस फ्लो को उल्टा करना है। एक सांस्कृतिक भेंट लोगों को बताएंगे, ऐसी भी जीवन शैली है ना। जैसे हमारे एक भक्त थे, वो पेट्रोल पंप पे गाड़ी पेट्रोल भरवा रहे थे और मर्सिडीज चला रहे थे, और गाड़ी से बाहर निकले तो धोती कुर्ता डाला होगा, तिलक लगाया होगा। तो एक और यंग लड़की थी जो गाड़ी वहां पे पेट्रोल भरवा रही थी, तो बड़ी उत्सुक हो गई, अरे ये क्या कॉम्बिनेशन है, मर्सिडीज के अंदर से एक युवा निकला और उसने ये सब डाला हुआ है, ये तो बड़ा, ये पंडित जी मर्सिडीज चला रहे हैं तो बड़ी हैरानी की बात है। तो गई उसके पास, एक्सक्यूज मी आपसे मैं पूछ सकती हूँ क्या कॉम्बिनेशन, समझ में नहीं आया आपकी ऐसी वेशभूषा, धोती तो आजकल कोई डालता नहीं है, एक तिलक भी, और माने ये क्या, और आप मर्सिडीज चला रहे हैं? बोले हाँ मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। हाँ अच्छा, तो फिर बताया कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। तो कल्चरल ये सांस्कृतिक भेंट है ना। तो हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं भागवतम के सिद्धांतों को, चरित्रों को, उनको अच्छे ढंग से उनका मंथन करके अपने जीवन में उतारेंगे, तभी पूरे समाज में परिवर्तन आएगा और तभी पूरे समाज का पुनः आध्यात्मिककरण होगा। और हम देखते हैं भागवतम में हर प्रकार के इंसिडेंट्स मिल जाते हैं। यहां हम देखें कि देवयानी और शर्मिष्ठा कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, विवाह से पहले भी, विवाह के बाद भी, और कैसे परिस्थितियां और परेशानियों की तरफ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इससे विपरीत परिस्थितियां भी देखते हैं, सुनीति और सुरुचि का है ना। सुरुचि ने ध्रुव को मना कर दिया कि आप पिता की गोद पे नहीं बैठ सकते, उल्टा सीधा सुनाया। ध्रुव पहुंचे अपनी माँ सुनीति के पास, तो सुनीति ने अगर अपने स्वभाव से नीचे गई होती तो क्या बोलते हैं, देखती हूँ उसको मैं अभी, है ना, मैं अभी अपने मायके में फ़ोन करती हूँ, बुलाती हूँ सबको, और ये जो हमारे राजा हैं ये भी बिल्कुल उसी के पीछे पड़ गए हैं, मेरे को मेरा अधिकार नहीं मिल रहा, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता था और बढ़ जाता। क्या क्या उन्होंने अपने हायर नेचर को बोला, आप जाइए क्या करो, भगवान की शरण ग्रहण करो, है ना। और ध्रुव का भी उद्धार हुआ और कितने लोगों को अच्छा सिद्धांत प्राप्त हुआ, शिक्षा प्राप्त हुई, है ना। लेकिन इसका उल्टा केस देखते हैं, चित्रकेतु है ना, चित्रकेतु को भी अपने सबसे छोटी पत्नी से आकर्षण के उसने पुत्र दिया, क्या नाम था उसका, कृताद्युति, है ना। बाकी सारी रानियों को द्वेष हो गया और इतना उनका जो निम्न प्रकृति इतनी आगे बढ़ गई, इतनी विकृति की तरफ बढ़ गई कि उन्होंने छोटी संतान का, बच्चे का वध कर दिया। इतना व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है, ये भी है भागवतम में देखते हैं, है ना। और उसके प्रकार से हम देखते हैं पांडवों में, है ना। यहां पे हालांकि राजा ययाति को अधिकार था एक से ज्यादा पत्नियों का संग करने का, लेकिन फिर भी इतने लड़ाई झगड़े हो गए। लेकिन हम देखते हैं पांडवों के केस में पांच पतियों और एक पत्नी है, वहां तो रोज लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, और सारे के सारे पांच महायोद्धा क्षत्रिय, वहां रोज लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, लेकिन क्यों, कृष्ण केंद्र में थे तो कितना सुंदर चला। पांचों पांडवों में ये गठबंधन था कि हर ने टाइम फिक्स किया हुआ था कौन एकांत में द्रौपदी के साथ किस समय रहेगा, और अगर कोई इस समय एक भाई द्रौपदी के साथ है और दूसरा भाई आके डिस्टर्ब करेगा तो ये निर्णय लिया गया कि उस भाई को फिर वनवास में जाना पड़ेगा। तो एक बार युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी थी और एक ब्राह्मण बाहर आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहाँ है धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बहुत चोर लुटेरे आए, मेरी गायों को चुरा कर ले गए। जिस राज्य में ब्राह्मणों की रक्षा नहीं, उस राजा का क्या कहना, उसको कोई अधिकार नहीं है राज करने का। और तरह तरह की बातें, गालियां देने लगा। अर्जुन ने इस बात को सुना, अर्जुन को बहुत क्रोध आया, नीचे आए, बोले क्या चाहिए ब्राह्मण, बोले मेरी गायें चुरा ले गया, मैं अभी तुम्हारी रक्षा करता हूं, चलो। लेकिन अर्जुन को ध्यान आया कि उसका गांडीव तो उस कमरे में है, कक्ष में है, जहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ है। अब अर्जुन सोचने लगे क्या करूं, अगर मैं इस समय जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे वनवास जाना पड़ेगा। लेकिन बोले अगर वो युधिष्ठिर को इस प्रकार से अपमान करेगा तो ये सहनीय नहीं है, ठीक है मैं वनवास जाने को तैयार हूं। तो उन्होंने दरवाजे पे थोड़ा सा खटखटाया और अंदर प्रवेश किया और सीधा वहां गए जहां उनके शस्त्र रखे थे और उठाकर बाहर आने लगे। और युधिष्ठिर मुस्कुरा रहे थे, युधिष्ठिर समझ गए कि कोई बहुत ही आपातकालीन परिस्थितियां होंगी। तो अर्जुन ने बताया ऐसी परिस्थिति है, और तुरंत अर्जुन गए ब्राह्मण के साथ, उन चोरों को पकड़ा और ब्राह्मण को उसका धन वापस किया। और जब अर्जुन वापस आए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन का बड़ा अच्छा स्वागत किया, सब भाइयों के साथ बोले, अर्जुन का गुणगान किया, देखिए अर्जुन ने कैसे एक ब्राह्मण की रक्षा की। तो लेकिन अर्जुन ने तुरंत युधिष्ठिर के चरणों में पड़े और बोले अब मुझे आज्ञा दीजिए वन में जाने के लिए। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे सकता हूं, तुमने अपने धर्म का पालन किया, और वैसे भी अगर एक छोटा भाई बड़े भाई के व्यक्तिगत कक्ष में आए तो ये अपराध नहीं है, अगर बड़ा भाई छोटे भाई के कक्ष में जाए तो ये अपराध है, ये निंदनीय है। तो आपने कोई अपराध नहीं किया, आपको वनवास में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, जो हमने बात पहले की थी वो होगी, मैं जाऊंगा। और फिर अर्जुन वनवास में गए। तो ये संस्कृति थी अपने आप ही, जहां संस्कृति है व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नहीं देखेगा, वहां कोई स्पृधा नहीं है, और जहां विकृति है वहां व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। और हमारा स्वभाव जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होगा हमारा, वो क्या है, विकृति की तरफ होगा। है ना, हम देख सकते हैं हमारे अंदर कोई भी एक बुरी आदत आएगी, अगर उसको हम रोकेंगे नहीं तो परिस्थिति और बिगड़ती जाएगी। अगर हमारे एक सुनने उठने का एक समय है और उसको हम थोड़ा सा डिले कर दें और होता जाएगा, और उस पर सुधारेंगे नहीं तो और देर होता जाएगा। है ना, हमारा जप है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा और उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप का जप ठीक हो जाएगा और बिगड़ता जाएगा। हमारा अध्ययन है, कई बार भक्त लोग सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं, काफ़ी काफ़ी दिन अध्ययन नहीं होता, तो फिर बाद में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि दोबारा पढ़ाई शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। आदत पड़ गई, छूट गई तो छूट गई, फिर दोबारा से अपने उत्साह को बढ़ाओ करो, बड़ा मुश्किल है। तो जो कंडीशनिंग है उसके साथ बहना तो बहुत स्वाभाविक है, इस कंडीशनिंग के उल्टे जाना, इस संस्कृति के फाना तो उल्टा बढ़ना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल है। तो हम देखते हैं, लेकिन अगर हम हमेशा गुरु के आदेशों को, भक्तों के संग में रहें और कृष्ण को केंद्र में रखें तो ये करना आसान हो जाता है, तो हमारी जो विल पावर है वो बढ़ती है। तो एक तरफ है कंडीशनिंग है, एक तरफ हमारी ये विल पावर है, ये बैटल, ये युद्ध हमेशा चलता रहेगा। लेकिन भक्तों की कृपा से हम अपनी कंडीशनिंग को, अपने जो स्वभाव को ओवरकम कर सकते हैं। है ना, इसी ढंग से भागवत में और प्रसंग आते हैं, पृथु महाराज का हम देखते हैं। है ना, पृथु महाराज भी क्षत्रिय हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और इंद्र आते हैं उनके यज्ञ में हस्तक्षेप करते हैं, तो क्या किया पृथु महाराज ने, इतने क्रोधित हो गए, 99 यज्ञ हो गए, ब्राह्मणों को आगे दे, ठीक है इनका वध कर दो, और वो वध करने ही वाले थे तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने पृथु को रोका। अगर पृथु जी का रजोगुण इतना बड़ा होता तो होता वो अपने अथॉरिटी की बात भी ना मानते, आप उनको फेवर कर रहे हैं। ना एक साधारण व्यक्ति ऐसे बिहेव करता, गलती किसकी है, मेरे की, इंद्र की, इंद्र की गलती, उसको जाकर संभालो, हमेशा मुझे क्यों पकड़ते हो, यही रिस्पॉन्स होता है नॉर्मल। है ना, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वर्षा देता है, मुझे आप पकड़ लेंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मानी। है ना, और फिर क्या हुआ, भगवान उनसे प्रसन्न हुए, भगवान वहां प्रकट हुए। इस प्रकार देखते हैं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया। द्रौपदी इतना दुखी हो गई, रोने लगी, तो अर्जुन ने वचन दिया कि जब तक मैं अश्वत्थामा का वध नहीं कर दूंगा और तुम उसके सर पे खड़े होकर तर्पण नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचूंगा। अर्जुन शपथ लेने में बहुत आगे थे, और उसका फिर काम भगवान को करना पड़ता था। भगवान ने बिठाया और भगवान रथ ले गए, अश्वत्थामा का पीछा किया, और अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अर्जुन फिर परेशान हो गया, अरे क्या। फिर भगवान की शरण ली, प्रार्थना की, भगवान ने बोला ये ब्रह्मास्त्र है, और अश्वत्थामा ने छोड़ तो दिया, वापस लेना नहीं आता इसको, तो अब दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ो और इसको काउंटरेक्ट करो। फिर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और फिर अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया, तो भगवान ने याद दिलाया अर्जुन को, तुमने वचन दिया था द्रौपदी को, सर काट दो इसका। लेकिन अर्जुन ने किया नहीं, रुक गए। उन्हें ठीक है, ले गए द्रौपदी के पास ले गए। और जब द्रौपदी ने देखा कि अर्जुन अश्वत्थामा को पशुओं की तरह रस्सी से खींच के ला रहे हैं, तो द्रौपदी का पहला रिस्पॉन्स ये नहीं था, बहुत अच्छा किया, मार दो इसको। बोला नहीं, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, खोल दो इसको, है ना। फिर बोला अरे ये तो आपके गुरु के पुत्र है, द्रोणाचार्य के पुत्र है, उनसे ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे। फिर तीसरा उन्होंने बोला, जो कृपी है द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद वो सती नहीं हुई, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने पुत्र पर निर्भर है, तो इसका वध कर देंगे तो कृपी का क्या होगा। फिर उन्होंने बोला, मैं जानती हूं कि पुत्रहीन होने का क्या दुख है, तो कृपी को पुत्रहीन नहीं होना चाहिए, तो ऐसा मत करो। ये जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी द्रौपदी ने, युधिष्ठिर ने बोला बिल्कुल ठीक है, नकुल सहदेव बोले बिल्कुल ठीक है, अर्जुन ने बोला बिल्कुल ठीक है, भीम बोला बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका वध करो। और फिर भगवान मुस्कुरा रहे ये सारा देख के, और अर्जुन को बोला अर्जुन अपने वचन को पूरा करो। अब अर्जुन भगवान भी बीच की बात करें, कभी इधर कभी उधर, है ना। तो अर्जुन समझ गए कि क्या करना है। तो अर्जुन ने बोला इसका वध भी करूंगा और वध नहीं भी करूंगा। क्या किया, उसके बाल काट दिए और उसकी मणि सर से निकाल दी, है ना। तो बहुत सुंदर उदाहरण है किस ऐसी विकट परिस्थितियों में भी कैसे उन्होंने संस्कृति की तरफ बढ़े, विकृति की तरफ नहीं। बहुत स्वाभाविक था, पकड़ते ही अश्वत्थामा का सर काट देते, इतना क्रोध था, नहीं ऐसा नहीं किया, है ना। तो जब हम भागवतम में ऐसे चरित्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसमें हम मंथन करते हैं, वहां से हमें शक्ति प्राप्त होती है। जब व्यास देव जी ने सारे वैदिक साहित्यों की रचना कर दी, तब भी वो संतुष्ट नहीं थे। और जब नारद मुनि वहां पर आए और उनको बोला कि हमने पूर्ण रूप से भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया, खुलकर वर्णन नहीं किया, तो फिर नारद मुनि जी का आशीर्वाद प्राप्त करके संप्राश्य में बद्रीनाथ के पश्चिमी तट पे व्यास देव जी बैठे, उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर उन्होंने देखा, उनको भगवान के भी दर्शन हुए और माया देवी के भी दर्शन हुए। उन्होंने देखा यह सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परो अपि मानुते अनर्थम्। हालांकि जीव है, उन्होंने देखा यह सम्मोहितम् जीवम्, जो जीव है कैसे त्रिगुणात्मक माया से सम्मोहित हो रहा है। परो अपि, हालांकि ये परे है, इन तीन गुणों से परे है आत्मा, लेकिन मानुते अनर्थदम्, अपने आप को ये शरीर मान रहा है। तब क्या हो रहा है, तत्कृतम अभिचाद्यते, और इसलिए बार बार कर्म फल में फंस रहा है। तो फिर क्या किया उन्होंने, फिर वह आगे के श्लोक में बता रहे हैं, अनर्थम उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य जानाति विद्वान चक्र सात्वत संगीता, कि इन अनर्थों से छुटकारा पाया जा सकता है अधोक्षज भगवान की भक्ति में जोड़कर। लोकस्य जानाता, साधारण लोग जानते नहीं, इसलिए विद्वान चक्रे सात्वत संगीता, तभी व्यास देव जी ने ये भागवतम की रचना की। तो कैसे भागवतम की रचना से हमारे अनर्थ कैसे समाप्त हो जाएंगे, भागवत यस्य वैश्वमानायाम कृष्ण परम पुरुष है भक्ति उत्पादते पुंसाम शोक मोह भयापहा, कि जिसके श्रवण करने मात्र से ही परम पुरुष कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है और शोक मोह भय से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर हमें तात्पर्य दिए, और प्रभुपाद जी के इस भागवतम के तात्पर्यों से पूरे विश्व में क्रांति आई है। भागवतम तो पहले भी थी, लेकिन पूरे विश्व में क्रांति नहीं आई थी, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से पूरे विश्व में क्रांति आई है। और हमारा भी ये कर्तव्य है इन तात्पर्यों को भी हम शरण ग्रहण करें भक्तों के संग में, और अपने जीवन की हर परिस्थिति को हम भागवतम में पा सकते हैं। हमारे कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी सुख कोई यूनिक नहीं है। हम सबको लगता है कि मेरी परिस्थिति कुछ यूनिक है। भक्तों को बोलते हैं जी आप मंदिर नहीं आ रहे, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। वो विशेष परिस्थितियां भागवतम में हैं, पढ़ेंगे उसका समाधान मिल जाएगा, और समाधान को अपने जीवन में उतारें। प्रभुपाद से हमें शक्ति प्राप्त होती है, प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों के संग से, तो हम विकृति से संस्कृति की ओर हमेशा प्रयास करते रहेंगे। इसके लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, ये इसके लिए निरंतर प्रयास चाहिए, नहीं तो बहुत आसान है गिरना, बहुत आसान है, स्वाभाविक है नीचे उतरना, लेकिन पूरे करंट के विरोध चलना है तो भागवतम की शरण चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए। तो देखते हैं प्रभुपाद जी ने जब हिप्पियों के पास गए तो पूर्ण रूप से एकदम विकृत समाज था, निष्कृष्ट समाज था। लेकिन कैसे हुआ, प्रभुपाद जब बॉस्टन में उतरे 18 सितंबर को तो देखकर परेशान हो गए, ये कैसी परिस्थितियां, कहां ये मेरा संदेश सुनेंगे। नहीं, प्रभुपाद जी ने फिर भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से श्लोकों का उच्चारण शुरू किया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। और प्रभुपाद को भागवतम के संदेश में पूरा विश्वास था कि इस भागवतम को सुनकर इनका हृदय परिवर्तन होगा। जिस प्रकार एक योद्धा क्षत्रिय युद्ध भूमि उतरने से पहले अपने तलवार को चूमता है, प्रभुपाद भी बॉस्टन में पैर रखने से पहले भागवतम को अपने सर पर रखा कि यस, ये भागवतम है जो पूरे इन सब के हृदय को बदल देगी। और उन्होंने भागवतम ने बदला भी, है ना। जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाने से पहले शांतिपुर में गए और वहां प्रार्थना कर रहे थे अद्वैत आचार्य जी के घर में, तो वहां के पुजारी आए प्रभुपाद के पास, पूछा कि क्या आप पाश्चात्य देशों में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं मैं नहीं जा रहा, भागवतम जा रही है और मैं उसकी सेवा करने जा रहा हूँ, ये चेतना है। तो इसलिए हम सबको इतना सुंदर ये ग्रंथ प्राप्त है, हम इसकी शरण सुन लें, इसके सिद्धांतों को समझें, भक्तों में इसकी चर्चा करें और हम देखेंगे निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है और आता रहे, हम वापस नीचे ना गिरें। क्योंकि भक्ति में कुछ साल बिताने के बाद फिर वो उत्साह कम हो जाता है, वो मेहनत करने की इच्छा कम हो जाती है और फिर क्या होता है, एक स्थान पर नहीं रह सकते। नदी में खड़े होकर हम एक स्थान पर नहीं रह सकते, प्रवाह है, बहते ही जाएंगे और छोड़ दिया अपने आप को बुआ बह जाएंगे। और अधिकांशतः ये होता है कि ठीक है जो चल रहा है ठीक है, वो बहते ही जाएंगे, पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य से कहीं दूर चले जाते हैं। इसलिए अपने आप में हम देखें ये जो सिद्धांत है प्रकृति विकृति और संस्कृति, तो हर अपने जीवन के पहलू में हम अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और विकृति प्रकृति से संस्कृति में आने के लिए हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, श्री प्रभुपाद जी के उदाहरण है और प्रभुपाद जी के शिष्यों के उदाहरण हैं, उनकी कृपा हमारे पास है, तो उनका हम लाभ उठाएं और अपने जीवन को 80 सही दिशा में आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी?
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी फॉर लेक्चर। जो मेरा क्वेश्चन ये जो अनुवाद है इसी में से है कि राजा ने बोला कि परमेश्वर की इच्छा मानकर शर्मिष्ठा के साथ वो संभोग करते हैं, लेकिन भागवतम में ऐसे और भी कई एग्जांपल मिलते हैं, जब शापित होते हैं राजा तो वो अन्य दूसरे तरीके अपनाते हैं, ऋषि मुनियों से प्रार्थना करते हैं पुत्र की उत्पत्ति के लिए। शर्मिष्ठा भी वो कर सकती थी और राजा के पास भी ऑप्शन था कि वो उन दोनों ऑप्शंस को चूज कर सकता था, पर उन्होंने भगवान को मतलब बोल दिया कि भगवान की वजह से भगवान की इच्छा है और उन्होंने उनके साथ संभोग किया, तो ये कहां तक सही है?
यानी कि आप कह रहे हैं कि ययाति क्या कर सकते थे इस अवस्था में,
किसी मतलब ऋषि उनको, क्योंकि शुक्राचार्य की चेतावनी तो याद ही थी, तो शुक्राचार्य से भी प्रार्थना कर सकते थे या उनसे बोल सकते थे कि आपकी पुत्री ऐसी इच्छा कर रही है, या अन्य किसी ऋषि से ऐसी इच्छा कर सकते थे, जबकि वो भी कर सकती शर्मिष्ठा। उस समय तो द्वापर युग में तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे कि वो अन्य ऋषियों से प्रार्थना करके पुत्र की इच्छा कर,
लेकिन सबके सब अपने अहंकार में थे, शुक्राचार्य पूरे अहंकार में थे, पुत्री से बहुत आसक्त थे और शर्मिष्ठा भी थे कि शर्मिष्ठा को भी मानने थे कि मैं राजा की पुत्री हूँ और ये सब मेरे टुकड़ों में पल रहे हैं, ये तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं मुझे नीचे होना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया अपने दासी उसको, सब अपने अहंकार में थे, किसी ने भी क्षमा मांगी नहीं एक दूसरे से। पहली बात, पहली बारी में क्षमा मांग ले तो परिस्थितियाँ आगे बढ़ती ही ना, नहीं मांगी, सब अपने अहंकार में थे, मेरी स्थिति ऊंची है ऐसे हो सेवा तो लेकिन सॉरी आप है। और किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न? हाँ बच्चे,
धन्यवाद प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास के लिए। आपने दो विशेष रूप से बात कहे, पहली तो महाराज पुरु महाराज ययाति जो दुविधा में पड़ गए थे कि एक तरफ शर्मिष्ठा का इच्छा को पूरी करना है या दूसरी तरफ उस श्राप से बचने के लिए उनको क्या करना है, एक तरह से वो किंग कर्तव्य मूड हो गए थे। उसी प्रकार से अर्जुन की भी परिस्थिति आपने बताए कि ब्राह्मण की रक्षा करनी है या जो वचन है उसको भंग करना है करके। एक साधक के जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आता है कि वो ऐसे कर्तव्यों की दुविधा में वो पड़ जाता है, वो कि एक तरफ सेवा है, दूसरी तरफ किसी भक्त के लिए किसी भी प्रकार की एक प्रेरणा देने वाली एक बात होती है उसके जीवन में, लेकिन वो समझता है कि नहीं, मेरी जो सेवा है वो मेरे को करनी ही है, भले ही वो भक्त का कुछ भी हो, उसका मन टूटे या वो भक्ति में उसको उत्साह ना मिल पाए। तो उस साधक को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, कैसे वो इस बात को समझे कि मेरे इस सेवा को, इन नियम को पालन करते रहने के कारण से मैं तो सफल हो गया, परिस्थिति शायद मुझे एक तरह से सफल प्रदान सफलता दे रही है कि बाकी भक्त भी जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैंने इस संदेश को पहुंचा है, मगर एक विशेष भक्त वो उस बात से संतुष्ट नहीं हुआ, या मैं यदि इस सेवा को कर रहा हूं लेकिन मंदिर अथॉरिटी का आदेश है कि नहीं, इस परिस्थिति में अभी सेवा किसी को करनी नहीं है, सब मंदिर में आइए आप अपने प्रचार को विराम दे करके, तो कैसे इस दुविधा से कैसे निकल सकते।
बहुत बड़ी दुविधा आसान क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियां आती रहती है भक्ति एक साधक के जीवन में, तो सबसे अच्छा यही है कि हम कंसल्ट करें, है ना, अपने से वरिष्ठ वैष्णव को हम कंसल्ट करें, भागवतम में पढ़ें और देखें प्रवच, कुछ जिस वैष्णव में हमें विश्वास है उसे जाके अपने हृदय को खोलें, समस्या सामने रखें। और कई बार ऐसे होते हैं कि संतुलन पाना बहुत मुश्किल होता है, ये करूं या वो करूं इतना आसान नहीं है, तो कई बार भगवान बुद्धि देते हैं और कई बार गलती हो भी जाती है, लेकिन अगर हम सचेत हैं, अटेंटिव हैं और अच्छा सही प्रयास कर रहे हैं तो कृष्ण हमसे जो गलती हुई उसको नज़रअंदाज भी करते हैं, और बाद में कुछ हुआ तो हमेशा हम जाके हम हृदय से क्षमा भी मांग सकते हैं। तो इसका कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल से, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और सबसे अच्छी बात है कि अकेले दुविधा में हैं तो भक्तों के संग में जाके पूछें कैसे इस दुविधा से।
प्रभु जी के प्रश्न से आगे एक पॉइंट मेरे मन में निकल आया, प्रभु जी तो सेवा और एक भक्त के उसको वक्त देने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक साधक के मन में डेली बेसिस पे सेवा और उसकी निजी साधना,
खुद की साधना,
उसकी निजी साधना, इसमें बहुत रस्साकसी चलती है। सेवा को सेवा दिया है अथॉरिटी ने, मेरा साधना भी करना है, जैसे आप बोले वो रीडिंग कभी छूट जाता है तो फिर बाद में वापस उसको शुरू करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, विकृत होने के लिए बहुत आसान है, तो कैसे इस दोनों के बीच में समन्वय करें।
मुश्किल प्रश्न पूछे और मैं खुद त्रासित रहता हूँ ऐसे समस्याओं से, तो
इसलिए आपको ज्यादा इसका अनुभव होगा, इसलिए आप क्या करते हैं, इसलिए आपको पूछे।
विकृत अवस्था में रहता
तो मैं कैसे अपने आप को, आप क्योंकि आप जो आप करते हो ये हमको पता है, बैलेंस कर पाते हो?
नहीं कर पाते, लेकिन हैं कुछ भक्त, नाम नहीं लेंगे उनके लिए एम्बैरेसिंग होगा, मैंने ऐसे भक्त देखे हैं, बहुत सेवाएं हैं, रात के 12 बजे बन जाए, एक भी बज जाए, अपना अध्ययन करके ही सोते हैं। तो मैं फिर तो ऐसे भक्तों के संपर्क में रहे, उनसे प्रेरणा ने और हैं, तो ये निर्भर करता है कि हमारी इच्छा कितनी प्रबल है, बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, है ना। जैसे मैं जानता हूँ राधानाथ स्वामी महाराज, मैंने एक लेक्चर सुना था जब वो न्यू वृंदावन में थे तो पुजारी की सेवा थी उनके पास, और उस समय कोई फैसिलिटीज भी नहीं थे, तो कैसे अध्ययन करते थे, आरती करते करते अध्ययन करते थे, हमेशा पुस्तक रखते, जितना समय मिला पढ़ लिया, थोड़ा सा समय मिला पढ़ लिया, थोड़ा समय मिला पढ़ लिया, अगर इच्छा है तो कर लेते हैं। कई ऐसे भक्त हैं पढ़ने का समय मिलता, ड्राइविंग करते करते अपने सामने श्लोक याद करते रहते हैं। अच्छा, एक बार राधेश्यामपुर भाई तो बता रहे थे, एक व्यक्ति बॉम्बे की ट्रेन में, लोकल ट्रेन में भागवतम पढ़ रहा है, खड़े होने की जगह नहीं है, अच्छा, क्योंकि हमारी इच्छा थोड़ी कमजोर होती है, थोड़ी सी समस्या होती है सबसे पहले इसी को छोड़ देते हैं। इट इज आई थिंक दृढ़ता में कमी है ना, और हमें लगता है बहुत हो तो गया, इतने साल हो गए, बिता तो दिया समय, और ठीक निकल भी रहा है, अच्छा अब स्टेटस भी ठीक है, सेटल तो हुई भक्ति में, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना, तो एक कंप्लेसेंसी आ गई। तो इसकी अर्जेंसी मालूम चलेगी, इसकी जरूरत है, तो हम हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ समय निकाल के करेंगे ही करेंगे, मुझे ये महसूस होता है। एक्सक्यूजेस तो बहुत हैं हमारे पास, कहने ये हो गया वो हो गया वो हो गया, लेकिन बहुत ही खराब हो गया परिस्थिति, बहुत भी हो जाए तो कहीं भक्त हैं कि वो ब्रेक लेते हैं, फिर इतनी कंटिन्यूस सेवा का प्रेशर हो गया, उसके बाद हम ब्रेक ले रहे हैं, वाला कहीं जाकर खूब पढ़ाई करें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
थैंक यू बुरी आपके सुंदर क्लास के लिए। बुरी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ये जब शुरू हुआ एकदम श्लोक हम पढ़ते हैं कि कैसे महाराज जाति के बस शर्मिष्ठा आती हैं, तो एक तो क्षत्रिय धर्म होता है कि याति महाराज को शर्मिष्ठा को स्वीकार करना होता है नहीं करना होता, लेकिन एट द सेम टाइम याति महाराज के गुरु का भी आदेश था, शुक्राचार्य गुरु के समान थे और ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण का भी आदेश था, तो क्या जो है वो ये क्षत्रिय धर्म का पालन करना श्रेष्ठ था या गुरु के आगे का पालन, ब्राह्मण के आगे का पालन करना श्रेष्ठ था, इसमें याति महाराज ने विचार नहीं किया ऐसा लगता है, उन्होंने सोचा कि भगवान की इच्छा है और उन्हें स्वीकार कर लिया, और प्रभुपाद भी इस पर टच नहीं करते, लेकिन मेरी जिज्ञासा थी कि क्या हम अगर जैसे हम ये सुनते हैं कि फॉर हायर प्रिंसिपल हम लोअर प्रिंसिपल को गिव अप करते हैं, तो क्या ये कंसिडरेशन याति महाराज ने नहीं लिया था, तो शायद फिर हो सकता था कि अगर ब्राह्मण की आज्ञा या गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ होती तो इस सिचुएशन में नहीं पड़ते।
हाँ, अच्छा प्रश्न है, मैंने इस पर विचार किया था, कई बार हम अपने वर्ण से बहुत आसक्त होते हैं, अपने इमेज से, मैं क्षत्रिय हूँ मुझे करना ही है, और फिर उसका कंसिडर नहीं किया। हम देखते जैसे सेम केस था, उर्वशी गई अर्जुन के पास, तो अर्जुन ने उसको नकारा, है ना, बोला तो पूर्व राजा के थे तो मेरी माँ के समान हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि याति में इतनी शक्ति नहीं थी उसको मना कर सके, याति की खुद इच्छा थी और उनके साथ उन्होंने संभोग किया और उसको पुत्र दिया और उसने फिर इसको विधि का विधान मान लिया, ठीक है। और ये भी हमारे साथ होता है, कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं हम थोड़े ढीले पड़ते हैं, बोले ठीक है जो भाग्य में मिल गए, इसको रिजिस्ट नहीं करते। हायर प्रिंसिपल था अगर वो शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करते, है ना। तो हम देख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से पूरे समाज में क्रांति आ रही है, और प्रभुपाद जी के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। तो कृतज्ञता मन से भी है, शब्दों से भी है और कर्म से भी है। मन से तो हम कृतज्ञ हैं प्रभुपाद के, और कर्मों में भी कभी कभी प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्य शब्दों में भी हम इसको व्यक्त करना चाहिए। और प्रभुपाद जी की व्यास पूजा आने वाली है, और प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के लिए पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रभुपाद की व्यास पूजा बुक निकाली जाती है जो पिछले साल से 2 सालों से चल रहा है। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबको पहले भी मैसेज, कितने लोगों के पास मैसेज आया होगा कि प्रभुपाद व्यास पूजा के लिए ऑफरिंग लिखनी है, कितने लोगों ने लिख लिया है, ना बहुत कम। तो सबसे निवेदन है, वैसे तो कल आखिरी तिथि थी लेकिन पंजाबी बाग के लिए विशेष छूट दी गई है, और कल आखिरी डेट है संडे, तो अच्छा नहीं लगेगा, पंजाबी बाग की रेपुटेशन खराब होगी कि यहाँ के भक्त जो है कम कृतज्ञ हैं प्रभुपाद के प्रति। पूरे दिल्ली NCR में जितने मंदिर हैं सबसे कम ऑफरिंग्स हमारे यहाँ से आई, अभी तक ये हम रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, तो सबसे कम से हम सबसे ऊपर जा सकते हैं। तो सब भक्तों से निवेदन है कि जो हमारे हृदय में भाव है प्रभुपाद जी के प्रति उसको अभिव्यक्त करें और ऑफरिंग भेजें। सबको मालूम है ऑफरिंग कहाँ भेजनी है, आप नोटिस बोर्ड पर भी लगा हुआ है, तो उस पर आप भेजिए, उसमें ईमेल कीजिए, और कृपया करें कल आखिरी डेट है, आज और कल तक इसको जरूर लिख लीजिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।